ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत्सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के सातवें स्कंद और पंद्रहवें अध्याय से श्लोक संख्या 74। धर्मस्ते गृह मेधियो वर्णितः पापनाशनः गृहस्थो येन पदवी अञ्जसान्यासिनामियात्। शब्दात् धर्मः वह धार्मिक विधि ते तुम्हें गृहमेधियः गृहस्थ जीवन में अनुरक्त रहकर वर्णितः जैसा मैंने बताया पाप नाशनः पाप कर्मों का विनाश गृहस्थः गृहस्थ जीवन बिताने वाला येन जिससे पदवी पद अंजसा सरलता से न्यासीना सन्यासियों का इयात प्राप्त कर सकते हैं। अनुवाद तथा तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की अनुवाद। भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन इतना शक्तिशाली है कि इससे गृहस्थ भी उसी चरम फल को सरलता से प्राप्त कर लेते हैं जो सन्यासियों को प्राप्त होता है। हे महाराज युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें धर्म की वह विधि बतला दी है। तात्पर्य यह कृष्णा भावनामृत आंदोलन की पुष्टि ही है। जो भी इस आंदोलन में भाग लेता है, चाहे वह किसी भी जाति का हो, उस सर्वोच्च फल को प्राप्त कर सकता है जो एक पूर्ण सन्यासी को प्राप्त होता है, अर्थात ब्रह्म ज्ञान। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि वह भक्ति में प्रगति कर सकता है। महाराज युधिष्ठिर ने सोचा कि वे गृहस्थ हैं, अतएव उन्हें अपना मोक्ष प्राप्त करने की कोई आशा नहीं थी। इसलिए उन्होंने नारद मुनि से पूछा था कि वे भव बंधन से किस प्रकार छूट सकें। लेकिन नारद मुनि ने अपना निजी उदाहरण देते हुए यह बतलाया कि भक्तों की संगति करने तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में बिना किसी संदेह के चरम सिद्धि अर्थात परम पद प्राप्त कर सकता है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादां ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो हमें श्रीमद् भागवतम में देखने को मिलता है कि सर्वोच्च ज्ञान दिया गया है और ज्ञान से हम सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं। यदि हमें ज्ञान नहीं है तो हम अज्ञान में अंधकार में रहते हैं और अंधकार में कुछ ठीक से दिखता नहीं है और कुछ ठीक से दिखा नहीं तो ठोकर खाएंगे इधर उधर। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम में सिर्फ ज्ञान नहीं भक्ति का ज्ञान दिया गया है, संबंध ज्ञान। क्योंकि अगर सिर्फ ज्ञान ब्रह्म ज्ञान किसी को प्राप्त हो तो वो सबसे उच्चतम नहीं है और जो लोग ज्ञान योग के मार्ग पर होते हैं बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ता है उन्हें। अगर सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति करें और भगवान की सेवा ना करें, भक्ति योग ना करें। इसलिए कहा गया है भगवद गीता में, बहुनाम जन्मानामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो कई जन्मों के उपरांत जो ज्ञान योगी हैं वो समझते हैं कि समझ पाते हैं कि श्री कृष्ण भगवान हैं और फिर उनकी भक्ति में वो लगते हैं। पर अगर कोई मनुष्य सीधा श्रीमद् भागवतम को अप्रोच करे तो उसे सीधा ही भक्ति योग का जो है फल मिल जाता है। सिर्फ सच्चे साफ दिल से सिंसियरिटी के साथ जो श्रीमद् भागवतम पढ़ता है उसे भगवत ज्ञान की प्राप्ति तो होती है पर भक्ति प्रेम भक्ति भी मिलती है। तो श्रीमद् भागवतम शुरुआत से ही उसमें उसका महत्व बताया गया है। श्रीमद् भागवतम को कहा गया है निगम कल्पतरुर गलितम भवम। तो जितने ये वैदिक शास्त्र हैं वो एक कल्पतरु की तरह है, सब कुछ मिलता है। ज्ञान है, उपासना कांड है, कर्म कांड है, सब कुछ है वेदों में, पर सबका जो गला हुआ पका हुआ फल है वो श्रीमद् भागवतम है। इसलिए प्रभुपाद ने हमें कहा है नित्यम भागवत सेव्या, कि रोज अगर हम भागवतम सुनेंगे पढ़ेंगे तो हमें वो गला हुआ फल जो है मीठा फल, वो जो पका हुआ फल है वो खाने को मिलेगा। नहीं तो अगर सिर्फ ज्ञान के मार्ग पर हम चलें तो जैसे कोई कच्चा फल होता है उसको खाने का प्रयास करें तो कैसा लगता है, थोड़ा वो खट्टा भी होगा और वो सख्त भी होगा, मजा नहीं आएगा, दांत भी टूटेंगे, जीवा पर भी उसका टेस्ट ठीक नहीं रहेगा। तो वो होता है अगर सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना है तो वो प्रोसेस उस तरह है जैसे कच्चा सख्त फल खाने का प्रयास करें। पर भक्ति जो है वो इसमें दी हुई है श्रीमद् भागवतम में और वो पके हुए फल की तरह है। और श्रील प्रभुपाद इसके भागवतम के प्रीफेस में लिखते हैं कि जो पका हुआ फल है आप कहीं से भी खाएं वो मीठा ही होता है। इसलिए भागवतम शुरुआत में किसी को अगर पता नहीं है उसकी उसका महत्व, तो वो कहीं से भी खोल के पढ़ सकता है, किसी भी स्कंध से, 12 स्कंध हैं, कहीं से भी खोल के पढ़े, उसे मिठास का अनुभव होगा, क्योंकि पका हुआ फल है हर जगह से मीठा है। पर प्रभुपाद क्या कहते हैं, एक बार आपको वो मिठास आ जाए, उसके बाद जो सीरियस रीडर है भागवतम का, उसे शुरुआत से पढ़ना चाहिए, पहला स्कंध, दूसरा, ऐसे धीरे धीरे जाना चाहिए। और जब आप 9वें स्कंध के अंत तक आएंगे तो प्रभुपाद कहते हैं आप गॉड कॉन्शियस हो जाएंगे। और फिर जब आप गॉड कॉन्शियस हो जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि कृष्ण की पदवी, उनका स्थान क्या है, फिर उनकी लीला में हम प्रवेश करते हैं 10वें स्कंध में। सो 10वां स्कंध सबसे महत्वपूर्ण है, पर अगर हम सीधे वो पढ़ें, शुरुआत में ठीक है थोड़ा बहुत इधर से पढ़ा, पर अगर हमें अच्छे से भागवतम समझनी है तो हम पहले से 9वें स्कंध को पढ़ के फिर 10वें स्कंध में जब प्रवेश करते हैं तो हम कृष्ण की लीला में प्रवेश कर सकेंगे। और कृष्ण जो है, उनकी जो पहले 9 स्कंधों में उनकी जो पोजीशन है वो समझ आती है, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में आए हैं, हम सभी को लगता है कि हम ईश्वर हैं, और ये सही बात नहीं है कि हम ईश्वर हैं कुछ हद तक, ईश्वर मतलब जो कंट्रोल कर सके, हम सब कुछ ना कुछ तो कंट्रोल कर ही सकते हैं, हमारे पास कुछ अपने घर है, हमारे पोजेशन में कुछ चीजें हैं, तो हमारा कंट्रोल है उसके ऊपर, किसी के पास पानी की बोतल है तो कंट्रोल है कितना भरना है, मेरे ऊपर है मैं कितना भरूंगा कितना पीऊंगा उसमें से, कहां रखूंगा, तो कंट्रोल है थोड़ा बहुत। और फिर हमारा कंट्रोल कुछ लोगों के ऊपर भी होता है, तो वो कंट्रोल हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, मां बाप को लगता है उनका कंट्रोल बच्चों के ऊपर है, हम जो कहें वो करना चाहिए, क्योंकि पाला पोसा है, इतना बड़ा किया है, श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जाए, तो हम किस लोगों पे कंट्रोल करना चाहते हैं, इसे कहते हैं ईश्वर भाव। पर जब हम भागवतम पढ़ते हैं तो इसमें पता लगता है कि ठीक बात है कि हम ईश्वर हैं कुछ हद तक, पर परम ईश्वर कौन है, सबसे ऊपर जो कंट्रोलर है वो कौन है, वो श्री कृष्ण है। एते चांस कला कृष्ण कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो जो भगवान है वो सबसे ऊपर, तो वो जब समझ आता है तो फिर हम भागवतम को अच्छे से समझ सकते हैं, कृष्ण की लीला को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज का जो श्लोक है इसमें नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से हरि नाम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। पूरी भागवतम में जो हरि नाम की महिमा है वो दी हुई है हर जगह, पहले स्कंध के पहले अध्याय में ही जो 14वां श्लोक है उसमें हरि नाम की महिमा दी है, यन नाम विवशो गृणन ततो सद्वेत विमुच्येत यद विवेति स्वयं भयम्, तो उसमें हरि नाम की महिमा है। फिर हम आगे आते हैं दूसरे स्कंध में, एतन निर्विद्यमान नाम इच्छताम अकुतो भयम योगी नाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। फिर हम आते हैं जब 6 अध्याय में, वहां तो बहुत ही व्याख्या उसकी विस्तार रूप से है हरि नाम की, अजामिल की लीला में। तो फिर जैसे जैसे आते हैं, यहां देखिए ये 7वें स्कंध में इस श्लोक में हरि नाम की महिमा बताई गई है, और फिर अंत में जो 12वां स्कंध का आखिरी अध्याय का आखिरी श्लोक, जो भागवतम का आखिरी श्लोक है, उसमें भी हरि नाम की महिमा बताई है। तो हरि नाम की महिमा पूरे भागवतम में है, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जब आए उन्होंने संकीर्तन मूवमेंट का आरंभ किया, और उन्होंने कहा कि इस कलयुग में केवल एक मात्र उपाय है जो ये चरम सिद्धि प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है, हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना। और महाप्रभु ने अपनी सारी शिक्षाएं किस शास्त्र पे बेस करी थी, भागवतम, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम आंगलम, ऐसा महाप्रभु ने कहा। तो अपनी सारी शिक्षाएं भागवतम पे उन्होंने आधारित की थी, इसीलिए क्योंकि इसमें हर जगह हरि नाम की महिमा दी हुई है। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तो कॉन्शियसनेस आपकी एलिवेट होती जाती है और फिर हमें समझ आता है कि हरि नाम की असल महिमा क्या है। तो आज के जो श्लोक में ये नारद मुनि उनको थोड़ा बता रहे हैं कि आप ये ना समझे कि आप थोड़ी नीची पोजीशन में हैं, कि आप गृहस्थ हैं और आप ये जो चरम सिद्धि है वो नहीं प्राप्त कर सकते। पहले तो वो अपना ही उदाहरण देते हैं, देखो मैं दासी पुत्र था और फिर मैंने भक्ति वेदांत जो थे भक्त थे उनका संग किया, उनसे हरि कथा सुनी, उनका उच्चिष्ट खाया और मैं मुझे सिद्धि मिली और मैं फिर नारद मुनि बना। तो ये अपनी पहले तो उन्होंने कहानी बताई और आज के जो श्लोक में वो कह रहे हैं कि आप ऐसा ना सोचें कि आप सिर्फ गृहस्थ हैं और जो आपके गृहस्थ जीवन में आसक्त हैं अनुरक्त हैं, ऐसा ना सोचें। आप भी अगर ये संकीर्तन, यहां लिखा है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन इतना शक्तिशाली है कि इससे गृहस्थ भी उसी चरम फल को सरलता से प्राप्त कर लेते हैं जो सन्यासियों को प्राप्त होता है। तो हमें ऐसा लगता है सन्यासी जो है वो सबसे ऊपर होता है और होता भी है, क्यों? क्योंकि उसका जो त्याग है वो सबसे ऊपर है। पर ये जो त्याग है वो सभी को करना है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि हाँ जी ये त्याग तो सिर्फ सन्यासियों और ब्रह्मचारियों के लिए है जो ये सैफ्रॉन में होते हैं। हम तो भौतिक जीवन में पूरा लीन हो सकते हैं, मग्न हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहां नारद मुनि कह रहे हैं कि ये संकीर्तन जो है ये सबको करना है और ये बहुत शक्तिशाली है। और इस श्लोक में आप देखें तो दो शब्दों का वर्णन है, धर्मस्ते गृह मेधी हो, तो गृह मेधी शब्द भी है और फिर बाद में गृहस्थ। तो ये दो शब्दों में क्या अंतर है, गृह मेधी और गृहस्थ? भक्ति विद्यापूर्ण महाराज के एक लेक्चर में मैंने सुना था, वो कह रहे थे कि गृह मेधी ऐसा नहीं होता कि वो असुर की तरह उसके दो सींग होंगे बहुत ही भयानक सा दिखेगा, गृह मेधी तो कर्मी गृह मेधी बिल्कुल असुर है, ऐसा नहीं होता। वो कहते वो गृहस्थ और गृह मेधी में ज्यादा फर्क नहीं है, फर्क इतना है कि जो गृहस्थ है वो अपने गृह से आसक्त है और जो भी कार्य कर रहा है अपने गृह के लिए, अपने शरीर के लिए और जो शरीर उसके शरीर से रिलेटेड है उसके लिए कर रहा है। नॉर्मल उसका जॉब होगा या बिजनेस होगा, पर सारा उसकी कॉन्शियसनेस कहां पे है कि मैं कैसे खुश रहूं, मेरे परिवार वाले कैसे खुश रहें और कैसे घर मेरा फले फूले। और गृहस्थ का क्या मतलब है, इसे कहते हैं गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम मीन्स कि उसमें जो अच्छा वो गृह में दी था, क्षमा चाहता हूं मैं अभी थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा हूं हिंदी में बोलने की। अच्छा धन्यवाद। तो गृह में वो गृह में दी था जो पहले मैंने बताया। तो गृहस्थ क्या है, गृहस्थ आश्रम, उसमें जो भी परिवार में है पति पत्नी बच्चे वो सब कृष्ण का आश्रय ले रहे हैं, इसलिए उसे कहते हैं आश्रम। गृह में भी आश्रम नहीं होता, उसे आश्रम नहीं कहते, वो गृह में भी है, उसमें वो आश्रय ले रहे हैं। पर किस चीज का आश्रय ले रहे हैं, अपने शरीर का कि हाँ मेरी सेहत अच्छी है, अच्छा खा रहा हूं पी रहा हूं, मेरे परिवार वाले इतने हैं। तो भागवतम में क्या कहा है, देह पत्य कलत्रा विश्व आत्म सैनेश्व असत सती तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन अपि न पश्यति। तो ये गृह में भी की डेफिनेशन दी हुई है दूसरे स्कंद में। तो वो किसका आश्रय ले रहा है, देह, कि मेरा देह बहुत बलवान है, कितना खा रहा हूं अच्छा, देहापत्य कलत्रा ऋषि, मेरे बच्चे कितने हैं ये देखो, ये मेरे पांच बच्चे हैं, कलत्रा मेरे पत्नी है, मेरा घर है, कितनी मेरी बड़ी सेना हो गई, कितना पावरफुल हूं मैं, तो ये जो मेंटेलिटी है इसे इसे एक्चुअली कहते हैं आसुरिक मेंटेलिटी। उसमें दिया है 16वें अध्याय में दिया हुआ है भगवत गीता के, इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्य मनोरथम इदम अस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्बन्धनम्। तो उसमें दिया है कि हाँ ये मेरा है, मैं कितना बलवान हूं, सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं कितना सुखी हूं देखो। और जो प्रेम यदि है उसका एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, वो दिखाना चाहता है कि कितना मैं खुश हूं। अभी मैं किसी के घर गया था, वो कह रहे हाँ जी मेरे को आज किसी की सगाई पे जाना है, 2 दिन बाद शादी है। अभी मैं किसी की शादी पे गया था, बहुत दूर थी फार्म हाउस पे और ठंड में इतनी दूर खुला था। तो फिर वही चर्चा हो रही थी कि लोग दिखाना चाहते हैं कि देखो कितना, ये देखो कितना हम एंजॉय कर रहे हैं। और शादी भी करेंगे ऐसी बड़ी बड़ी जगह, पूरा उधार लेके, चाहे उधार लेके पूरा दिखावा एक करेंगे। तो इसे कहते हैं गृह नेदी लाइफ, कि दिखाएंगे कि ये देखो मेरी सेना। पर भागवतम ने क्या दिया है, असत सुअपी असत, ये सेना असत है, फॉलिबल सोल्जर्स, ये जो सारे सोल्जर सेना जो इकट्ठी करी है एक एक करके गिरेंगे और आप भी गिरोगे, देह ये जो शरीर है ये गिरेगा एक दिन। तो इसलिए जो ये भगवत ज्ञान है इसमें बताया गया है कि ये जो असत चीजें हैं इसमें शरण नहीं लेनी, शरण कहां लेनी है, कृष्ण में। तो वो है गृहस्थ जीवन। इसी के बारे में नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि आप अगर अच्छे से शरण लेते हैं कृष्ण की तो आपको भी वही पद प्राप्त होगा। और जो लोग अपने इंद्रियों की तृप्ति में ही आसक्त रहते हैं, उसी में मग्न रहते हैं, उन्हें समझ नहीं आ सकता कि भगवान कौन है और हम हमारी हमारा क्या वास्तविक रूप में हमारी पोजीशन क्या है, कि हम आत्मा हैं शरीर नहीं है, ये समझ नहीं आ सकता। इसी साथ में स्कंद में प्रहलाद महाराज कहते हैं, मतिर्न कृष्ण परतो स्वतोवा मिथो विपद्ये तगृह व्रतानां अदांत गोवे विशतां तमिष्ठं पुनः पुनः चर्वित चरणानां। तो मतिर्न कृष्ण, कृष्ण के बारे में नहीं सोच पाएंगे जो लोग अपने इंद्रियों में इंद्रिय तृप्ति में आ सकते हैं। गृह व्रत, जो गृह व्रत है गृह में भी है, वो उनकी मन में कृष्ण का भाव नहीं आएगा। मतेन कृष्ण परतो स्वतोव, या तो अपने आप से नहीं उठेगा या किसी और की हेल्प से भी नहीं होगा या इसके कॉम्बिनेशन से। मतिर्न कृष्ण परतो स्वतोवा मिथो भी पद्य गृह व्रताना, तो आ ही नहीं सकता, अपने आप से उत्पन्न नहीं होगा। जब तक भक्तों का संग नहीं करेंगे, हरि नाम संकीर्तन नहीं करेंगे, तो कितना भी आप मेहनत कर लें संसार में, कितना भी मॉरालिटी फॉलो कर लें, कितने भी अच्छे पद पे आप हों, कितना भी अच्छा परिवार चला रहे हों, पर कृष्ण के तरफ जो भाव है वो जागृत नहीं होगा अपने आप से या और किसी की हेल्प से, सिर्फ भक्तों की हेल्प से होगा, भक्तों के संग से होगा। तो वही नारद मुनि कह रहे हैं, भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन जो कि भक्तों के संग में होता है, यह बहुत शक्तिशाली है। और क्या कह रहे हैं नारद मुनि, कि आपको वही परम पद प्राप्त होगा जो कि सन्यासियों को होता है। और क्या लिखते हैं प्रभुपाद, कि सन्यासियों को क्या प्राप्त होता है, ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्म ज्ञान, और उसके बाद लिखा है इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि वे भक्ति में प्रगति करते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान सबसे ऊपर नहीं है, पर भगवद गीता में भी दिया है कि सन्यासियों की जो क्वालिटीज है वो दी हुई है, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, ये तीन क्वालिटी दी हुई है 16वें अध्याय में। अभयम, एक तो सन्यासी में भय नहीं होता क्योंकि वो रिनाउंस्ड ऑर्डर में, उसके पास कुछ है ही नहीं तो भय किस चीज का। आपके पास जितनी चीजें हैं और जितनी महंगी चीजें हैं उतना भय ज्यादा होगा। देखें जो बड़े बड़े जितने अमीर लोग हैं उनको ज्यादा भय है कि मेरे प्रॉपर्टी चली जाएगी, कोई चोर आ जाएगा, वो घर को ऐसे किले जैसा बना देते हैं, जेल जैसा है ना, कोई घुस नहीं सकता, बाहर दो तीन कुत्ते रखे हुए हैं और कोई भी खटका है तो पहले कुत्ते भौंकते हैं, फिर कोई आदमी आएगा तो उससे तो मिल ही नहीं सकते अंदर, क्योंकि वो डरा हुआ बैठा है अंदर, तो कौन है मेरे को कोई तकलीफ देने आया है, वो बहुत डरा हुआ मेरा कोई पैसा ले लेगा, कई भक्त भी आते हैं कि दान ले लेगा, बहुत डरा हुआ बैठा है। पर सन्यासी के पास कुछ है ही नहीं, अभयम सत अभय उसके पास कुछ है ही नहीं, सब कुछ वो कृष्ण पे निर्भर है अपनी मेंटेनेंस के लिए भी, उसे ये भी भय नहीं कि क्या खाऊंगा, कृष्णा की भक्ति में रहता है, उसे ब्रह्म ज्ञान है, उसे पता है कि जो भगवान है वो सबको कुछ मेंटेन कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मुझे क्यों नहीं करेंगे। एको बहुनाम जो विदधाति कामान, जो भगवान है वो सबको खाना दे रहे हैं। प्रभुपाद कई जगह लिखते थे कि इतनी सारी चींटियां हैं, इतने सारे हाथी हैं, एक हाथी कितने टन खाना खाता है रोज, कौन देता है उसे, वो तो डरा हुआ नहीं है, उसे भी मिलता है। तो इसी तरह जो ये सन्यासी है वो अभय, उसमें भय नहीं है। और प्रभुपाद का क्या नाम था, अभय, अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी। और इससे ऊपर का ज्ञान क्या है, उसमें अभय, इसलिए अभय चरणारविंद, वो भगवान के चरणों की शरण लेता है, इसलिए उसमें भय नहीं है। तो ये एक क्वालिटी है सन्यासियों की, तो ये हम सबको डेवलप करनी है क्वालिटी, भगवान के चरण में शरण लेंगे तो हमें भी भय नहीं होगा किसी चीज का। अभय सत्व संशुद्धि, और उसमें शुद्धि आती है, सत्व संशुद्धि प्योरिटी, ऐसा कहते हैं ना, प्योरिटी इज द फोर्स, प्रभुपाद ने कहा। तो ये प्योरिटी जब तक नहीं होगी, मन में कलमश रहेंगे तो बहुत मुश्किल आएगी जीवन में। और यहां लिखा है पाप नाशन गृह में भी हो वर्णित, पाप नाशन, पाप कर्मों का विनाश होगा, सत्व संशुद्धि, तो इससे शुद्धि आएगी, पाप नाश होंगे, जो अंदर अनर्थ है उनका नाश होगा भक्तों के संग में संकीर्तन करके, और फिर सत्व संशुद्धि प्योरिटी आएगी, फिर चीजें थोड़ी साफ साफ दिखेंगी। और क्या क्वालिटी है सन्यासियों की, अभय सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, तो ये है वो ज्ञान योग में, ब्रह्म ज्ञान में व्यवस्थिति, स्थित है, सिचुएटेड है, तो उन्हें पता है कि ये शरीर है, ये आत्मा है, और वो आत्मा के लेवल पे काम करते हैं, सब में वो आत्मा, सभी जीव जीवों को समान देखते हैं। तो ये कह रहे हैं नारद मुनि, अगर आप संकीर्तन करेंगे, युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं, तो आप भी उसी लेवल पे आएंगे। अगर आप देखें हमारे इस्कॉन में कितने सन्यासी हैं, लगभग 100-110 होंगे, और कितने भक्त हैं, बहुत भक्त हैं, कोई लगभग किसी को मालूम है अंदाजा कितना होंगे, मुझको नहीं मालूम, कई हजार लाख, कई लाख भक्त हैं। तो कितने परसेंट सन्यासी हैं उसमें से, जो 110 है, 1% से भी कम, ठीक है ना। तो ज्यादातर तो गृहस्थ हैं, कुछ ब्रह्मचारी हैं, पर यहां नारद मुनि कह रहे हैं ये सन्यास एक सन्यास ऑर्डर तो है ही वर्णाश्रम में, एक आश्रम तो है ही, पर ये एक मन की सिचुएशन भी है कि आपके मन में क्या है। इसलिए अर्जुन जो है वो कृष्ण से पूछ रहे हैं 18वें अध्याय में कि ये सन्यास क्या है, त्याग क्या है, शुरू ही ऐसे होता है 18वां अध्याय। तो वहां कृष्ण कहते हैं काम्यानाम कर्मणाम न्यासम सन्यासम कवयो विदु, जो आप भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते हैं उसे छोड़ देना है, इसी को सन्यास कहते हैं। तो अगर हम ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, वानप्रस्थ हैं, कोई भी है, अगर हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं कर रहे तो हम मन से सन्यासी हैं। तो ये कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को, काम्यानाम कर्मणाम न्यासन, तो जो अपनी काम इच्छा है, अपने संतुष्टि, अपने इंद्रियों की संतुष्टि, इसके लिए हमें काम नहीं करना, कार्य नहीं करना, तो उसी को हम सन्यास कहते हैं। और यहां शब्द क्या दिया है आज के श्लोक में, पदवीन, कौन सी पदवी। तो ये सन्यासी, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, ये सब जो वर्णाश्रम है, ये सारी पदवियां हैं, भौतिक पदवियां हैं। पर कृष्णा ने ये एक सिस्टम दिया है, चातुर्वर्णम मया सिस्टम, गुरु कर्म विभागशर। तो हमारी जो स्थिति है उसके हिसाब से, उसके अनुसार अगर हम किसी आश्रम में, किसी वर्ण में कार्य करते हैं कृष्ण की संतुष्टि के लिए, तो वो बहुत अच्छा है। और उससे धीरे धीरे हम जो है ये टेम्पररी पदवियों से ऊपर उठ जाएंगे। नारद मुनि ही कहते हैं, शायद नारद पंचरात्र में, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो वहां क्या कह रहे हैं, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। तो उपाधियां और यही पदवी या उपाधि एक ही बात है, इससे मुक्त होना है। हमें ये नहीं सोचना कि हम ये हैं वो हैं, हम महिला हैं, हम पुरुष हैं, हम जवान हैं, हम वृद्ध हैं, ये भी सब पदवियां हैं। हम भारतीय हैं, हम अमेरिकन हैं। और फिर जब हम कृष्णा की भी, कृष्णा का सिस्टम भी फॉलो करते हैं, उसमें भी पदवियां हैं कि हम ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, हम हमारे में क्षत्रिय भाव है, ये सब भी पदवियां हैं। अंत में क्या करना है, इस सब से ऊपर आना है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, निर्मल हो जाना है, मतलब शुद्ध हो जाना है। और ऋषिकेश की सेवा करनी है, उसे भक्ति कहते हैं। तो निर्मल होने का क्या अर्थ है, जैसे मल क्या होता है, शरीर में मल है तो गंदगी है, निर्मल, गंदगी निकल जाती है तो काफी शुद्धिकरण हो जाता है, शुद्ध और बहुत अच्छा, मन भी काफी साफ रहता है। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात हो रही थी कुछ दिन पहले, तो वो कह रहे थे जैसे कई बार मल नहीं निकल पाता, कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो कह रहे वो एक ऐसी बीमारी है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारी बीमारियां अपने आप आ जाएंगी। अगर मल नहीं निकल रहा तो वही अंदर बीमारियां ले आएगा। तो इसी तरह ये जो पदवियां हैं, ये एक तरह का मल है, गंदगी है एक तरह की। और अगर हमारे दिमाग में ये बैठ गया कि मैं ये हूं, वो कुछ भी हो सकता है, छोटी या बड़ी पदवी, पर अगर बैठ गया कि मैं ये हूं, मैं पुरुष हूं या मैं मैनेजर हूं, कुछ भी हो सकता है, मैं प्रसाद, मैं हेड कुक हूं या मैं सबसे अच्छा पुजारी हूं, ये सारी ये जो चीज है, ये अगर अटक गई तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। और जो बाकी सारी बीमारियां हैं फिर आएंगी, आप घमंडी रहेंगे और भक्तों में को अपराध करेंगे, ठीक है ना, सब सब चीज उससे आएगी अगर ये मल अटका रह गया, ये पदवियां मन में अटकी रह गई। तो इसलिए नारद मुनि यहां बता रहे हैं कि संकीर्तन करें, और ये इतना शक्तिशाली है कि चरम सफलता उससे प्राप्त होगी। और ये जो टेम्परेरी पदवियां हैं, ये इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। तो ये नारद मुनि, हम देखते हैं नारद मुनि की शिक्षाएं पूरी भागवतम में हर जगह है। शुरू में वो व्यास देव को देते हैं, फिर ध्रुव महाराज को, प्रहलाद महाराज को, प्राचीनी परिच्छेद को, यहां युधिष्ठिर महाराज से बात कर रहे हैं। तो नारद मुनि जो है, उनकी पोजीशन बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और इसीलिए हम देखते हैं कि पंच तत्व में जो जीव तत्व हैं, मार्जिनल पोटेंसी, श्रीवास पंडित, वो नारद मुनि ही हैं। तो इसलिए पंच तत्व में हम जो भगवान की पूजा करते हैं उसमें नारद मुनि भी हैं। तो इसलिए इनकी शिक्षाएं बहुत ही आवश्यक हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं, और हमें बहुत अच्छे से इनकी शिक्षाओं को ग्रहण करना चाहिए। तो मैं यहां समाप्त करूंगा, हमारे पास पांच दस पांच सात मिनट हैं, कुछ प्रश्न या टिप्पणी हो किसी की। हरे कृष्ण। नहीं नहीं, वो तो नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत ऑल ग्लोरीज टू प्रभुपाद। भक्ति सार दास। प्रभु, ऑल ग्लोरीज टू प्रभुपाद। और आयु मेरी ज्यादा कम नहीं है, 34 साल है, बस बढ़ापे की ओर अग्रसर हूं आयु हाँ माता जी कुछ प्रश्न पढ़ते हैं हम वहां क्या लिखा है। तो ये दूसरा श्लोक है 18वें अध्याय का भगवत गीता का। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु। तो मेरे पास यहां अंग्रेजी है, हिंदी भगवत गीता नहीं है। इसमें लिखा है द गिविंग अप ऑफ एक्टिविटीज दैट आर बेस्ड ऑन मटेरियल डिजायर। तो वैसा कार्य जो मटेरियल डिजायर पे बेस्ड है उसे छोड़ देना है, और उसी को जो ये कवि लोग हैं, जो लर्नेड लोग हैं, वो संन्यास कहते हैं। तो ये सिंपल डेफिनेशन है। अब मटेरियल डिजायर, भौतिक इच्छा, कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें अगर ये इच्छा है कि मेरी इंद्रिय तृप्ति हो, वैसा कार्य छोड़ देना है, उसी को संन्यास कहते हैं। तो सिंपल वे में कृष्णा समझा रहे हैं। हाँ वही मन ये मन ही की बात है कि जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें अपनी वो मटेरियल डिजायर नहीं होनी चाहिए, भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति करूं। तो ये संन्यास मन की एक पोजीशन भी है। संन्यास आश्रम तो है ही, जैसे मैंने बताया 100-110 सन्यासी हैं इस्कॉन में, उन्होंने ऑफिशियली संन्यास आश्रम ग्रहण किया है। पर ये जो संन्यास जो मन की स्थिति है वो सभी को करना है, और वही नारद मुनि कह रहे हैं आज के श्लोक में। हाँ इसलिए कृष्णा उनको बोल रहे हैं, अर्जुन जब कहते हैं मन बहुत चंचल है, असल में अर्जुन का मन हमेशा कृष्णा के चरणों में था, पर थोड़े टाइम के लिए वो माया में आ गए क्योंकि भगवत गीता बोली जानी थी। किसके लिए? हमारे लिए। तो असल में भगवत गीता अर्जुन के लिए ही नहीं बोली, हमारे लिए बोली कृष्ण ने। तो उसके बाद क्या कहते हैं, अभ्यास ये तो कौन थे, वैराग्यों से प्रियते। पहले तो कहते हैं असंशय महाबाहो मनोदुर्निग्रह चलन, कि हाँ वो एग्री करते हैं। अर्जुन कह रहे हैं मेरा मन चंचल है, कृष्ण कहते हैं असंशय, इसमें कोई संशय नहीं है, मन है चंचल मैं मानता हूं। पर फिर क्या कहते हैं, अभ्यास ही नहीं तो कौन थे या वैराग्य न चलिए थे। तो ये वैराग्य, ये जो संन्यास आज बात हो रही है, ये वैराग्य मन में रखना है और अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है, और इससे आप मन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। मन को एक हाथी के समान माना जाता है, और देखिए हाथी इतना बड़ा होता है, उसके पीठ ऊपर एक वो महोत बैठा होता है कितना छोटा सा, तो हाथी कभी भी उसको सोन से पटक सकता है नहीं, उसको टाइम नहीं लगेगा, 2 सेकंड में मृत्यु हो सकती है उसकी। पर वो छोटा सा बैठा, उसके पास छोटा सा डंडा होता है, एलिफेंट गोल्ड बोलते हैं हिंदी में, मुझे मालूम नहीं, अंकुश, हाँ छोटा सा ही होता है ना, कितना बड़ा होता है, और हाथी कितना बड़ा है, पर वो कंट्रोल कर लिया उसने, क्योंकि उसका एक मेथड है, उसका एक तरीका है। तो इसी तरह मन इतना चंचल है और इतना स्टबन है, उसको नहीं कंट्रोल किया जा सकता। चंचल भी मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़, पर कृष्ण कहते हैं अभ्यास ही नहीं तो कौन थे, प्रैक्टिस से हो सकता है। जिस तरह हाथी को कंट्रोल किया जा सकता है, एक एक तरीका होता है, इसी तरह मन को भी किया जा सकता है, और यही सारा तरीका ही है नित्यम भागवत से गया, श्रवण कीर्तन, जो श्रवण करेंगे, जो सुनेंगे, जो बोलेंगे, उसी का स्मरण होगा। तो ये जो सारी हमारे इस्कॉन में प्रभुपाद ने फैसिलिटीज दी हैं वो इसीलिए है। कुछ लोग कहते थे ना कि 2 प्रिंसिपल है, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो वो ये सबसे दो, जो जितनी भी चीजें हम कर रहे हैं, गोल यही है कि मन में से हमेशा कृष्णा का स्मरण करें, कृष्णा को कभी भूलें ना। अभी 2 दिन पहले मैं मंदिर से न्यू बिल्डिंग की तरफ जा रहा था, तो एक दूसरी साइड पे एक स्कूटर आकर रुका और वो आदमी वहां से चिल्ला रहा। उन्होंने बाहर देखा कि प्रभुपाद की बैनर्स पे थी फोटो, तो कह रहा ये वही मंदिर है ना जो जुहू में भी है, तो मेरे को बुला रहा है आप इस साइड आओ। तो मैं सड़क क्रॉस करके चला गया, तो कह रहा ये वही मंदिर है ना। मैं कहा ये वही मंदिर है, जुहू में भी है हमारी एक ब्रांच। कह रहा हाँ मैंने वो बाबा जी की फोटो देखी, मैं समझ गया, मैं गया था जुहू, बाबा जी मतलब प्रभुपाद की देखी उन्होंने। कह रहा मैं गया था जुहू अभी अब पिछले महीने और प्रसाद खाया, बहुत अच्छा बहुत सुंदर। कह रहा मेरे सपनों में आ रहा है वो उसे स्मरण होगा, एक बार गया वो इस्कॉन, मेरे अपने परिवार के साथ गया प्रसाद किया, बहुत कह रहे मेरे सपनों में आ रहा है वो। तो मैंने अच्छा बातचीत की। तो यही है, जितना भी इस्कॉन में जो भी चीज हो रही है, एक बार भी कोई आ जाए तो वो स्मरण आता है, मन कंट्रोल हो जाता है। तो फिर उससे बात की धीरे धीरे, उसने मुझे छोड़ भी दिया वहां अपने स्कूटर पर। फिर मैंने कहा गीता जयंती का चल रहा है, मन थाने वाला है, एक भगवत गीता ले लो, ले ली उसने एक भगवत गीता भी ले ली। तो इसी तरह थोड़ा सा अगर टेस्ट कर लें कृष्णा कॉन्शियसनेस, कुछ भी चीज, प्रसाद ले लिया, भगवान का दर्शन कर लिया, भक्तों से मिल लिए, कीर्तन अटेंड कर लिया, भगवत गीता क्लास, भागवतम क्लास अटेंड कर ली, हरे कृष्णा मंत्र का एक माला कर ली, तो वो स्मरण आएगा और मन कंट्रोल हो जाएगा। और कोई प्रश्न या टिप्पणी कोई भक्त?
जो वर्ड यूज किए गृहस्थ और गृहपति दोनों आए हैं, तो इस दोनों वर्ड एक साथ एक ही श्लोक में यूज किए, इसका मतलब किस कंटेक्स्ट में दोनों यूज किए?
हाँ, एक उसी कंटेक्स्ट में कि क्योंकि युधिष्ठिर महाराज बहुत हम्बल है, तो वो सोच रहे हैं मैं तो गृह में दी हूं, गृह से आसक्त हूं, उनकी मेंटेलिटी वैसे है। लेकिन भक्त ऐसा होता है, युधिष्ठिर महाराज जैसे शुरू में पहले स्कंद में आप देखेंगे महाभारत का युद्ध हुआ, इतने लोग मारे गए, उसका ब्लेम अपने ऊपर ले गए कि मेरी वजह से हुआ क्योंकि मुझे राजा बनना था। तो वो हम्बल है इसलिए वो ऐसा सोच रहे हैं, और वो नारद मुनि समझ गए कि इनकी ऐसी सोच है, इसलिए उनको आश्वासन दे रहे हैं कि आप ऐसा मत सोचो कि आप गृह से आ सकते हो, आप गृहस्थ, गृहस्थ येन पदवी, तो अगर आप गृहस्थ आश्रम में अच्छे से संकीर्तन करें तो वही पदवी पालेंगे जो सन्यासियों को मिलती है। वही तो इस ये दो कंटेक्स्ट हैं, एक उनकी थिंकिंग और एक नारद मुनि आश्वासन दे रहे हैं कि नहीं गृहस्थ आश्रम से आप वही मिलेंगे। ठीक है, फिर समाप्त करते हैं, 9:00 ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, शीला प्रभुपाद की, नित्य गौर प्रेम मंदिर।